को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी, अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
शांति। एक गांव में बड़ा चतुर होशियार क्लेवर माइंड चोर रहता था। इसने सारे ऐसा कोई घर नहीं बाकी था जहां चोरी ना की हो। इतना तक कि राजा के घर में भी डाका डाल लिया, उसको भी खजाना लूट लिया, पूरा कंगाल कर दिया। तो एक दिन चोर सोचता है एकांत में बैठ के कि अभी कौन बचा है इस गांव में। तो उसे याद आता है कि एक मंदिर बाकी रह गया है जहाँ बहुत खजाना है। इंसानों को तो लूट लिया, अभी भगवान को भी लूटना है। तो वो जाता है मंदिर और भगवान के सामने कहता है कि आज तुम्हारा मंदिर कंगाल होने वाला है, हिम्मत है तो सामने आ जाओ, आज मैं आपके मंदिर को लूटने आया हूँ। पूरा गांव तो खाली हो गया है, अब आपका भी आपकी बारी है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। और भगवान साधारण कोई अटैच तो है नहीं भगवान के धन खजाने से। तो उस चोर से कहते हैं कि बच्चे तो तुम्हारा ही है, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम आओ ले जाओ, हमारी जिम्मेवारी पूरी हुई, ले जाओ सारा तुम। और वो चोर धन सारा तो ले जाता है, लेकिन इस बार उसमें एक क्रांति हो जाती है उसके मन में। आज तक लोगों घर में जब वो चोरी करने जाता था तो छुपा के और बड़ा एक्साइटमेंट होता था उसको चोरी करने के बाद, लेकिन आज भ्रमित हो गया वो, क्योंकि भगवान ने खुद सौंप दिया, चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। जाते जाते उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं और वो साहब धन तो छोड़ता है, एकांत में जाके बैठ जाता है और अपने ही विचार में खो जाता है, आखिर मुझे इतनी आसानी से कैसे प्राप्ति हो गई। और फिर वो वापस जाता है उसी मंदिर और भगवान से कहता है कि धन तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न उसके साथ कि आपने आसानी से मुझे धन दे दिया कैसे, और आज तक आपके पास लोग चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, मुझे ही क्यों दे दिया वो सारी प्राप्तियाँ। तो भगवान कहते हैं आज तक जो लोग मेरे पास आए ना, वो देते थोड़ा थे और मांगते ज़्यादा थे, तुम ही एक ऐसे आए कि सब कुछ मांगने आ गए, तो मैंने तुमको सब कुछ दे दिया। उसके जीवन में अध्यात्म, उसके जीवन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि, और दर्शन भी हम किसी को नहीं देते थे, तुम ही मेरे सच्चे भक्त थे जो तुमको ही दर्शन मिले हमारे। और इसका एक ही कारण था, सत्यता। तुमने सच सच कहा कि मैं तुम्हारे इधर धन लेने आया हूँ। लोग तो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं कि मैं देने आया हूँ, लेकिन रहते वो भिखारी हैं। कितने से बड़े बड़ा व्यक्ति हो, था भिखारी और थोड़ा सा देगा और उसका वर्णन पूरे गांव में ढिंढोरा पटवा देगा। तो जब जीवन में सत्यता जो टॉपिक है, पहले दिन तो देखा जगाया, दूसरे दिन बेहोश किया, आज अथॉरिटी की बारी है, तीसरा दिन अथॉरिटी का दिन है, तो सत्यता की अथॉरिटी, इस मुरली का टाइटल है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी, सब दोनों के बीच बैलेंस। स्नेह भी हो, बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बोला था, लेकिन ज्ञान सहित स्नेह हो तब वो स्नेह है। लास्ट संडे की लास्ट संडे ये वाली मुरली तो 20 मार्च 87, तो इसमें मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने बहुत सारी नई नई बातें बताई हैं, जिसमें बाबा ने डोज की भी बात की है, नवीनता की बात की है, बैलेंस की बात की है, दुनिया अंतिम चरण में होगी उसका भी बाबा ने बताया है, लास्ट ऑफ फास्ट की भी बात की है बाबा ने, बहुत सारी बातें, बहुत सारी राज की बातें जो लोग कहते हैं, वैसे फॉरेनर आए थे तो बाबा ने उनसे भी बात, ज्ञानयुक्त बात की है, सरेंडर की भी बात की है, श्रीमत की, मर्यादाओं की, विनाश की तैयारियां, बहुत सारी, बहुत सारे राज कहें कि उसमें मुरली में हैं, और नए नए शब्दों का बाबा ने उपयोग किया है, और कहे जाए तो चारों सब्जेक्ट इस एक गुण में, सत्यता में समाये हुए हैं। सत्य बाप आया है सत्य ज्ञान देने, तो ज्ञान भी है, सत्य गुण धारण करने हैं, सत्यता तुमको धारण करनी है, तो वो भी उसमें समाया हुआ है, सत्य याद, सत्य बाप को याद करना है, तो याद की भी वो समाई हुई है, और धारणा, सत्यता की जीवन में धारणा करनी है, राम नाम सत्य है, तो बाबा ने ये भी बोला है कि सत्संग में लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, सत्संगी, सत्य का संग, तो सत्य के दो अर्थ बाबा ने बताए, एक सत्य सत्य है और एक अविनाशी है। बाबा ने कह, इसमें सत्य, जब आपके जीवन में सत्यता आती है तो क्या क्या होता है, उसके फायदे बहुत सारे गिनाए हैं, तो पहले आप बताएंगे, फिर मुरली में बाबा ने क्या सुनाया, फिर वो उसकी निर्भयता होती है सत्यता में, और सामना करने की शक्ति होती है, और सस्तो वीटो नच, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन, और हल्का रहेगा, और याद रखने का टेंशन ही नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुरली कुछ भी नहीं किया, आज कुछ भी नहीं किया, हमेशा टेंशन रहता था, ये करूं वो करूं, कुछ ना करना ही सबसे बड़ी रिलैक्सेशन है, कुछ करने जाओ तभी गड़बड़ होता है। मुरली पढ़ लो अगर क्लास के पहले तो फिर बहुत सारे पॉइंट एकदम से, मतलब वो ही होता है, कुछ भी याद नहीं रहता, पढ़ने ही नहीं, आज बाबा को बोलो पढ़ने ही नहीं, रिलैक्स होके शाम को, रिलैक्स होके क्लास सुनो, सोया भी रिलैक्स होके, बाकी दिन से आधा घंटे लेट ही उठे, बाकी दिन टेंशन होता था जल्दी उठना है, आज बाबा आप जब उठाना हो। सबसे बड़ा टेंशन, अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है कभी कभी, तो रिलैक्स। तो बाबा ने इसमें बोला है कि आप इवेंट करना है आपको, इवेंटर हो आप, रिसर्चर हो, ज्ञान को भी प्रत्यक्ष करना है दुनिया में, लेकिन लॉजिकल, लॉजिक से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नए नए बच्चों को मुझा दो नया ज्ञान सुना के। और जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि पेशेंट जो होता है उसको समय काल परिस्थिति धरनी देख के वो देते हैं, और उसका मर्ज देख के डोज देते हैं, किसी को अब हाई पावर की डोज चाहिए, बहुत साल हो गए ज्ञान में चलते, अब उसको थोड़ा नीरस अवस्था आ रही, उसको हाई डोज चाहिए, अब क्योंकि साधारण क्लास उसको मजा नहीं आ रहा है, इसलिए रूहानी क्रांति की जरूरत है, अब अध्यात्म में उन्नति का एक ही मार्ग है, लास्ट ऑफ फास्ट का एक ही मार्ग है, क्रांति। इस ये भ्रम है हमारा कि ये मार्ग शांति का है, ये मार्ग क्रांति का है, शांति का मार्ग बिल्कुल भी नहीं है, ये क्रांति का मार्ग है। क्रांति जीवन में परेशानी किसके जीवन में नहीं होती, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारी हो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि परेशानी नहीं है। जीवन में हर किसी हर व्यक्ति के साथ परेशानी है, लेकिन उस परेशानी से कोई निकल जाता है, कोई उस परेशानी को निपटा देता है और कोई निपट जाता है, तो दोनों चीज़ हो जाती, कोई निपटाता है कोई निपट जाता है। तो ऐसे ही तो वर्तमान समय तो कोई भी चीज़ें पता नहीं चल रही कि क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अचानक आज मतलब बुक से मुरली पढ़ रहे थे, सबसे लास्ट ही पेज खोला, तो एक और चीज़ है जो महसूस हुई कि मोबाइल से आप मुरली पढ़ेंगे उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, आप पेपर से पढ़ेंगे उसका अलग एक्सपीरियंस है, और जो बुक है उससे आप पढ़ेंगे तो उसका और अलग अनुभव है। तीनों में अलग अलग वाइब्रेशन है। मोबाइल से 10 बार भी पढ़ लो तो आपको अलग महसूसता होगी, आप बुक एक नज़र ही पड़ जाए, ऐसे खड़ी नज़र, कोई भी शब्द नहीं पढ़ा, ऐसे नज़र ही पड़ जाए तो हो सकता है सारा अंदर आ जाए। तो इसी में सुबह बाबा के उधर बैठे थे और ऐसे ही ख्याल चल रहा था कि ऐसा क्यों, तो शायद वो शब्द जो टाइप किए गए वो किस अवस्था में टाइप किए गए, जो प्रिंटिंग करने वाला है उसने किस अवस्था में प्रिंटिंग की है। ये मोबाइल बनाने वाले ने कोई ये थोड़ी ख्याल से कि कोई इसमें मुरली पड़ेगा, इस ख्याल से नहीं बनाया हो, उसका तो इनकम का ख्याल था, लेकिन जो बुक हमारे यज्ञ में बनाई गई, जो मुरली मिलती उसमें त्याग है, उसके साथ सब कुछ समाया हुआ। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब डिजिटल चीज़ों से एकदम दूर कभी कभी रखना चाहिए अपने आप को, तब महसूस होता है कि साधन, क्योंकि बाबा ने जब रमेश भाई जी 2008 में 30 नवंबर 2008 में बाबा आए थे, मुलाकात की बाबा से और ब्लास्टिंग हुई थी बॉम्बे में, तो वो समाचार बाबा को दिया, बाबा से कहा उनने कि बाबा ऐसे ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि सेंटर्स तो सुरक्षित है ना, और बॉम्बे बाप का है। और एक और बात बाबा ने कही, बाबा ने सब कुछ सुनाया है कि अंत समय फुल स्टॉप और तपस्या, ये समय है फुल स्टॉप का और तपस्या का आने वाली। तो जब हम सारी साधन, उसमें एक और शब्द था कि साधन भी अंत समय ख़त्म हो जाएंगे, सारे साधन, और साधन का यूज़ करते हुए साधना, बाबा ने कहा साधना को बढ़ाओ, साधन को यूज़ करो लेकिन साधना तरफ जाए। तो बाबा ने बात सुनाई और अंत का भी इशारा दिया कि अंतिम समय बाबा यही चाहते हैं कि तपस्या। और अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में स्पष्ट टाइमिंग भी बताई अमृत वेले की, 2 से 5 और 8 घंटे। जब भगवान का स्नेह और सत्यता में क्या है, किसी एक को भी लेंगे तो दोनों चीज़ होंगी, दोनों में समान है। अगर इस ईश्वर के प्रति स्नेह ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक जीवन में सत्यता आ जाएगी, और ईश्वर के प्रति बिल्कुल साफ दिल हैं तो भी सत्यता आ जाएगी। जैसे चोर था, भले चोर लेकिन साफ दिल था। तो एक बार क्या हुआ, माताजी के पैसे चोरी हो गए, तो उन्होंने घर के आंगन के बाहर चूल्हा जलाया, उसमें कढ़ाई रखी चूल्हा जला के, और उसमें तेल डाला, और दो लोग हमको पकड़े हुए थे। अब बोलो चोरी किसने की, सही सही बताओ, नहीं तो हाथ इसमें डाल दिए जाएंगे। तो बाद गरुड़ पुराण का वो दृश्य याद आ गया, तो हमने जो बचपन में छोटे में था, जो गांव में जो चलता था, तो हमने कहा विद्या की कसम हमने नहीं चुराया, काली की कसम हमने नहीं चुराया, विद्या मना सरस्वती की कसम हमने नहीं चुराया। अब सारे आधार टूट गए, सच सच बताओ, बिल्कुल अथॉरिटी से कह रहे हैं, बिल्कुल हमने तो चोरी नहीं की, डाल दो। माता जी ने बोला कि अगर तुमने चोरी की होगी तो हाथ जल जाएंगे, और नहीं की होगी तो नहीं जलेंगे। तो अंदर डर था क्योंकि चोरी तो की थी, लेकिन अथॉरिटी थी कि चोरी तो हमने की ही नहीं, सत्यता के साथ बिल्कुल। अब उनको भी कन्फ्यूजन की तो इसी ने है, लेकिन 100% स्वीकार नहीं करा। बोले कुछ नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे अगर तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर नहीं किया तो डाल के रहेंगे। ज्ञान तो नहीं था, यही बस सुनते थे बचपन से, बाबा ही को देखा था फोटो, वही जानते थे कि यही भगवान है, यही सिखाया था बचपन से। तो अंदर से क्या क्या, अगर भगवान अगर हो तो आज बचा लेना, भगवान अगर आप, बाबा, बाबा बोला, बाबा अगर आप भगवान हो तो आज आप बचा लेना, नहीं तो आप सोच लेना। जैसा भी करके हिम्मत करते रहे, अपने में अड़े रहे, फिर बाद में छोड़ दिया गया और बच गए। अभी तो और आजादी हो गई कि भगवान बैठा है, टेंशन नहीं है, कुछ भी करो। तो जीवन में बहुत आदत भी ऐसे कहो कि शायद ज्ञान कब आपको मिलना है, कैसे मिलना है, वो कलाकार से बड़ा कोई नहीं है। भले वो आज बाबा ने मुरली में कहा ना, पूछा है मास्टर शक्तिवान कौन है, ड्रामा है या ईश्वर है, और फिर घुमा पर आके बोला, पहले तो बोला कि ईश्वर सर्व शक्तिमान है, लेकिन वो भी बंधा हुआ है ड्रामा में। तो एक ख्याल ये भी चलता है कभी कभी कि जब कृष्ण लीला जो बात की, कृष्ण लीला में जब कृष्ण ने चोरी की थी तो उसको रस्सी में बांध दिया गया, तो अब रस्सी बलवान है या कृष्ण बलवान है, कहा जाए तो बाबा ने ढाल बना ली है अपनी बस सुरक्षित की, नहीं तो सारी शिकायतें तो जानी थी कि भाई आपने सृष्टि रची है तो बचाने वाले भी आप हो। अभी कोरोना काल में भी भगवान के पास ही जाते, लेकिन वो भी कहता है बच्चे ये तो हो नहीं है। चलो ब्राह्मण के साथ भी होता तो हम तो शिकायत करते ना बाबा से, लेकिन बाबा ने तो सारे राज पहले से खोल के रखे। आगे जो आने वाली मुरली है उसमें बाबा ने बड़ी अच्छी बहुत सारी बातें तो की है। 31 दिसंबर 1987 की जो मुरली है, बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने बहुत सारे राज तो था ही दिए हैं, नवीनता। अंत में तो साधन नहीं होंगे, 99 की मुरली में बाबा ने कहा अंत में साधन नहीं होंगे, साधना के साथ साधन ऐड करो, साधन के साथ साधना ऐड करो, समय की पुकार, इच्छा मात्रम अविद्या। अब तो घर जाना है, दिसंबर में 87 में दादी से बाबा मिल रहे थे और बाबा ने कहा अब तो घर जाना है, तो दादी ने बड़े प्यार से बाबा को गले लगा के पूछा बाबा कब जाना है। बाबा ने फिर बोला समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा, जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा, जब हम समझेंगे कि अब विनाश काल नजदीक है लेकिन तब नहीं आएगा। हो सकता है अभी हम समझ रहे कि विनाश काल नजदीक है लेकिन अभी नज़दीक नहीं है। अभी तो बाबा ने जो दृश्य बताए हैं कि क्यों लगनी है, तो मैं देखना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। जब समझने से थोड़े अलबेले होंगे तो अचानक आएगा, आने की निशानी अलबेलेपन वाले अलबेलेपन में आएंगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे, फिर तो सब कहेंगे हम अष्टरतन हैं, हम भी पास हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे, बाकी जो महारथी हैं उनको टचिंग आएगी, लेकिन बाप नहीं बताएगा, टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेंगे, एक सेकंड पहले भी नहीं करेंगे कि एक सेकंड बाद होना है, यह भी नहीं कहेंगे नंबर बार बनने इसलिए यह हिसाब रखा हुआ है। अचानक जो पेज खुला था वो यही था लास्ट में, तो कितनी लास्ट मूल्य थी 87 की, और लास्ट की ये 5 लाइन है लास्ट पेज में। तो बाबा ने कहा नवीनता सत्यता निर्भयता बढ़ती जाएगी, निर्भयता ऐसी कि किसी से भी कोई भी भय नहीं, अपने जो हुआ हुआ। और एक और चीज़ हम कहेंगे कि अब तो समय बिल्कुल नज़दीक पहुंचा है और सब चीज़ें स्पष्ट हैं, आत्मसमर्पण की ज़रूरत है, क्योंकि अंत समय भी कन्फ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी चीज़ जल्दी करूं। इस मूल्य में बाबा ने एक बात और कही कि 50 साल और पहले के 50 साल और अब के 5 वर्ष बराबर हैं, तुम तो बने बनाए में आ गए, सारी चीज़ें हैं, सारी मूल्य हैं अध्ययन करने के लिए, सारी सामग्री है, क्लासेस हैं, क्लासेसों की तो बाढ़ आ गई है, कौन सा सुने कौन सा न सुने, आधे तो उसमें डूब के मरेंगे। एक और मूल्य में बाबा ने कहा है ये क्लास वो क्लास है ना, एक और मूल्य बड़ी अच्छी, 24 फरवरी 2002 के मूल्य में, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन निगेटिव हैं, तो विश्व कल्याण प्रति व्यक्ति से वायुमंडल फैला नहीं सकेंगे, यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, कई लोग आते हैं बोला हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर दो, हमारी शूटिंग कर दो थोड़ा। समय अब वृत्ति का है। और कल की मूल्य में बाबा ने कितनी गहरी बातें बता दी कि बच्चे जो मनन भी करते हैं वो अपने लिए ही कल्याण कर सकते हैं, अपनी स्वान्नति, लेकिन जो अनुभव और मगन रहते हैं उसमें सारी चीज़ें आती हैं। मनन करने वाला सिर्फ पूजन योग्य है, लेकिन जो मगन रहने वाला है गायन योग्य है, मनन करने वाला गायन योग्य है, और जो मगन रहने वाला है गायन पूजन, तो उसमें भी नंबर बार हैं, वो तो बात हुई। तो इस मुरली में बाबा ने नवीनता कही है और कहा है कि सच की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। कल भी मुरली में बाबा ने कहा था कि दो नाव में पैर रखने वाले हैं और दोनों पैर एक नाव में रखने वाले। अभी भी हम इस समय को इस चीज़ को देख रहे हैं और फिर भी इधर उधर खबर करना, इधर उधर फ़ोन करना या मतलब न्यूज़ तमाम इकट्ठी करते रहना और जानने की इच्छा रखना कब विनाश होगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। डेट भी आपको मिल जाए और करना कुछ नहीं है तो मतलब क्या है कि कब होगा क्या होगा, कई लोगों ने लिख के रखा है। हमारा विनाश तो वास्तव में चल ही रहा है ना, जो पल हमने व्यर्थ गपा दिए, जो समय गपा दिया वो तो विनाश ही हो गया ना, वो तो रिटर्न नहीं आना ना, वो कल्प कल्प ये बाजी बाबा ने कहा। तो कभी कभी हम भी चतराई करते हैं बाबा से बहुत सारी चीज़ों में। डॉक्टर चतुर सुजान क्लिनिक के बाहर लिखा था डॉक्टर चतुर सुजान, तो एक चतुर व्यक्ति उधर का गुजर रहा था क्लिनिक के सामने से, क्लिनिक के सामने लिखा था कि अगर इलाज नहीं कर पाए तो एक का डबल इलाज का जो पैसा है वो डबल वापस किया जाएगा आपको। तो एक चतुर व्यक्ति, जैसे हम ब्राह्मणों में भी कुछ चतुर हैं, चतुर व्यक्ति पहुंचा कि चलो इसी बहाने कमाई कर लेता हूँ, आज डॉक्टर को देखता हूँ मैं। तो पहले जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब से कहता है कि मुझे जीभ में ना स्वाद नहीं आता है। अब तो अभी तो बोले जीभ में स्वाद नहीं आता है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, फीस इतनी इतनी है जमा कर दो, अभी स्वाद आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आपको डबल पैसे वापस। तो वो तो चतुर था कि देखता हूँ मैं अभी डबल लेके ही वापस लौटूंगा। तो डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट से कहते हैं इसको एक नंबर की ड्रॉज है उससे दवा रखी है, वो निकाल के इसको दे दो, पिला दो। तो जैसे ही वो दवा उसको पिलाते हैं तो वो कहता है पागल हो गए हो क्या, क्रोधित हो जाता है भयंकर, बोले ये तो पेट्रोल पिला दिया मेरे को। बोले स्वाद आ गया ना, बस जाओ। वो भी बोले आज तो मेरे को लूट लिया इसने, हम इसको भी छोड़ूंगा नहीं। फिर दोबारा जाता है दूसरे दिन, और अब इस बार कहता है कि मेरी याददाश्त चली गई है, मेरी याददाश्त चली गई है डॉक्टर साहब, क्या करूं कि वो वापस आ जाए। बोले कोई नहीं, चलो चेकिंग करते हैं। चेकिंग किया सारी की, फिर बोला कि असिस्टेंट को बोला कि इसको एक नंबर ड्राज की जो दवा रखी है ना वो फिर पिला दो। तो वो कहता है कि वो तो वही दवा है जो कल पिलाई थी, और पेट्रोल था वो तो। तो बोले आ गई नहीं है दस लाख पैसे, जाओ। अभी तो वो खोल गया उसका खून। अब बोले ये तो मेरे को उल्लू बना दिया, लूट लिया, मैं तो उसको लूटने गया था, इसने मेरे को लूट लिया। अभी वो तीसरी बार बिल्कुल फुल प्लानिंग में, अब तो मैं अंधा ही बन के जाता हूँ, कौन सी दवा डालेगा आंखों में। अभी तो तीसरी बार जाता है, बोलता है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर थोड़ा मोड़ा इलाज करते हैं, आँख खोल के फाड़ फाड़ के देखते हैं, टार्च लगा के देखते हैं। चलो ठीक है, अब मैं हार गया, इसका तो मेरे पास भी इलाज नहीं है। चल असिस्टेंट के पास भेजते हैं, बोले 500 रुपये फीस ली थी, 1000 रुपये वापस कर दो। तो उसने वापस कर दिया, दो नोट दे दिए उसको, लेकिन वो 100-100 के नोट थे। बोले ये तो क्या है कि 1000 रुपये की बात थी, ये पूरा नहीं है 1000 रुपये, तो 200 रुपये हैं। बोले आँख आ गई ना, ला वापस करो पूरे, जाओ। तो ऐसे ही कहानी ऐसे ही है कि हम भी अंत समय पहुंच चुके हैं, हम भी वही चतुराई बाबा से ना करें। जो रियलिटी है वो आत्मसमर्पण करने में ही है। जब आत्मसमर्पण कर दिया जाता है तो परिवर्तन में क्रांति आ जाती है। जो जब अपनी बुद्धि लगाते हैं, बाबा ने इस मुरली में ये भी कहा है, ये मुख का सौदा नहीं, ये दिल का सौदा है, दिल का सौदा है। और बाबा ने फिर इस मुरली में कहा कि स्टाम्प यहीं से लगेगा, जैसे उस देश में जाना है तो पासपोर्ट में स्टाम्प जरूरी है, ऐसे ही उस दुनिया में जाना है तो मधुबन में ही स्टाम्प लगेगा। फिर और क्या, सबने पढ़ी ना मुरली, और क्या क्या कहा बाबा ने, सत्यता की बताई है कि याद सत्य है, ज्ञान सत्य है, बाप सत्य है, शक्तियां सत्य हैं, गुण सत्य हैं, जो बनने वाले हैं वो भी सत्य है, सत्य नारायण है, सत्य लक्ष्मी, सतयुग स्थापन होने वाला है, और सत्य का संग करने वाले। और कहते भी हैं, दुनिया में कहावत है, सत्य तारे को संग बोरे, और सत्य कभी परेशान नहीं हो सकता। हम कॉलेज से जाते थे और एक रास्ते में एक किराने की दुकान थी, और उस दुकान में कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं लगा था बोर्ड, सिर्फ एक वाक्य लिख के रखा था। बहुत बड़ी दुकान थी, कुछ भी नहीं था, किसी का नाम नहीं था, और एक शोकेस में बहुत बड़े शब्दों में लिखा था उधर। वो शब्द हम डेली पढ़ते थे, लगातार 5 साल में ऐसा कभी नहीं कि उस रास्ते से गुजरें और उस शब्द को ना पढ़ें। उधर लिखा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो तब से अंदर झूठ तो बहुत बोलते थे, बिजनेस में भी थे तो इतने झूठ बोले होंगे, इतने झूठ के उस झूठ से भी बहुत परेशान हो गए, तंग हो गए। इतना झूठ बोल के लोगों को लूटा है, कसूटा है, बहुत सारी चीज़ें की हैं झूठ बोल बोल के। झूठ ही से, झूठ के कारण ही अंदर कौन सी अग्नि प्रज्वलित हो गई पता ही नहीं चला। और उस दिन से सब बदल दिया। तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो बाबा ने एक योग के बहुत अच्छा अभ्यास इसमें बताया कि बच्चे बाप के दिल में तुम्हारा चित्र है, और मधुवन घर में बच्चों का चित्र खिंच जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो चित्र का भी बहुत महत्व होता है कभी कभी। तो हमारा चित्र कौन सा है ओरिजिनल? जब हम योग में बैठते हैं तो हम परमधाम में बिंदु रूप, वही हमारा ओरिजिनल चित्र है। बाबा ने गीत को भी, एक दुनिया के गीत को याद किया है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे मुरली में बहुत सारी बातें हैं। अगर एक शब्द को भी ले लिया जाए तो इस मार्ग में जो हमारी भट्टी है 31 दिन की, तो इसमें क्रांति तो करनी ही है। और शायद ये मुरलियाँ 31 दिन हैं, इसमें वो क्रांति कर जानी है जो आज तक नहीं की। वो क्रांति वास्तव में ना सुनने से होगी ना कुछ, अधिक अनुभव से ही होगी क्रांति। और क्रांति उन चीज़ों में होगी जो ब्रेन में, जो हमने जो धारणाएं बनाई रखी हैं, जब तक वो टूटेंगी नहीं, चाहे कोई भी हो, उनको तोड़ने के लिए थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, अपने आप को बिठाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें तो बहुत सारे हैं, अनुभव भी जीवन में बहुत सारे हैं, शायद समय भी कम पड़ जाए लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ नवीनता करते रहना है, नवीनता इस ज्ञान की जो ओरिजिनलिटी है वो नवीनता है। और योग में जो नवीनता आती है, हर बार नई अनुभव नए ही होंगे। जब आप योग में अगर बैठेंगे आत्मसमर्पण करके, अपनी बुद्धि ना चला के, तो हमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि नया अनुभव ना हो। हो सकता है अचानक बहुत कुछ हो सकता है। एक छोटा सा अनुभव सुना के ओम शांति करेंगे कि जब हम इधर आए, आने से पहले एक बहुत कुछ घटनाएं घटी आने के पहले, और कोई वो जीवन में कोई दिनचर्या फॉलो नहीं करते थे, मर्यादाएं जो कहो कि दिनचर्या जो बाबा ने कही श्रीमत का, कभी भी उठना, कोई अमृत वेला, मुरली कभी सुन ली कभी नहीं सुनी, कभी चले गए सेंटर में, कभी सेवा की, बिजनेस था तो सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते थे। लेकिन एक भावना अंदर से मन खाता रहता था कि बताओ इस जीवन को पा के भी, ब्राह्मण बन के भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी भी दुनिया में लगे हुए हैं, उस जिसको बाबा कहता है मिट्टी के समान, और उसमें ही हम लगे हुए हैं, तो कब छूटूंगा बाबा मैं। सिर्फ आत्म दिल से वो आवाज़ निकली कि बाबा सब कुछ तो हो गया था, पे सारी जिम्मेवारी हमने पूरी कर दी, कब हमको निकालोगे। और इन हम तो इतने फंस चुके हैं इस माया के चक्कर में, इस मकड़ी के जाल में, कि अब हमारा निकलना भी मुश्किल हो गया है। क्योंकि धन जब आता है तो अकेला नहीं आता है, संसाधन इतने सारे ले आता है कि फिर धन जरूरत जब शुरुआत करता है व्यक्ति, शायद वो जरूरत के हिसाब से सोचता है कि जरूरत है जीवन में, लेकिन जब धन आता है तो बहुत सारी चीज़ें इतनी बढ़ा लेता है कि फिर धन के बिना जीवन ही असंभव हो जाता है। तो लोभ, एक लोभ में व्यक्ति फंस जाता है। तो अचानक ऐसा ख्याल आया और ऐसा जीवन में एक क्रांति की भगवान ने कि उससे छूटना, अचानक एक दिन में परिवर्तन हो गया और मधुबन पहुँचे, वो भी थोड़े समय के लिए। लेकिन एक दिन बाबा की कुटिया में सुबह अमृत वेला बैठे थे, मैंने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ काम नहीं किया जो इस स्थान पे पहुंच गया कैसे। तो अचानक एक दृश्य देखा, अचानक, कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं, कि एक सन्यासी के भेष में एक व्यक्ति है और एक कुआं है जिसमें बहुत सारी तलवारें लगी हुई हैं और उसमें वो कूद गया और हमारी आंखों से उसी समय आंसू आने लगे। उसकी पत्नी और कुछ उसके बच्चे जो हैं खड़े थे और उनसे वो लास्ट मुलाकात करके ये कह के कि मैं शिव पे अर्पण हो रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और बस उस दौरान वो कुएं में कूद गया और हमारी आंखों से कुछ आंसू निकलने लगे। तो बाबा ने फिर जैसा भी इच्छा मतलब जो भी हुआ हो उस दौरान फिर ऐसा आत्म सारी चीज़ों से इच्छाओं से मतलब मन तृप्त हो गया और फिर एक और आवाज़ आई जहाँ से भी आई हो कि बच्चे तुमने पूर्व जन्म में भगवान के लिए अपने जीवन को अर्पण किया, उस पुण्य का फल है कि तुम इधर पहुंच गए। और जीवन में फिर उस दिन के बाद वो कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ें ऐसी घट जाती हैं कि उस बात में इतनी सत्यता कि वो जीवन में घुस गई वो बात। और फिर लौटने का संकल्प ही डिलीट हो गया माइंड से। और फिर सारी चीज़ें यहीं से डिलीट करेंगी, बहुत सारे कैंसिलेशन यहाँ आने से पहले कई कंपनी के साथ टाई अप किया था, सारे कैंसिलेशन यहीं से किए, सारा बिजनेस को ड्रॉप करना यहीं से बैठे बैठे, क्योंकि वो संकल्प ऐसा बाबा कहता है ना कि तीन चीज़ें होती हैं बाबा, और एक संकल्प था बचपन से कि बाबा जब भी अंत समय आए ना तो मुझे मधुबन में बुला लेना। फिर एक दिन जस्ट नेक्स्ट दिन ही बाबा कमरे में बैठे थे और एक और दृश्य हमको जिस दिन अमृत वेले के पहले बैठे थे तो उधर स्वप्न रात को आया कि बच्चे एक स्वप्न में देखा कि बाबा कमरा लॉक है और चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं और सिर्फ बाबा का फोटो बाहर से देख रहे हैं, लोग लाइन लगी हुई है और बाहर जेड फोर्स लगा हुआ है पांडव वन के बाहर, पूरी बाउंड्री के बाहर कोई भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है और बाहर भीड़ से लोग चिल्ला रहे हैं और बाबा कमरा लॉक है, सिर्फ देख सकते हो, बैठ भी नहीं सकते अंदर, बाहर से देख सकते हो बाबा का फोटो। और उसके एक साल बाद एक घटना हुई कि लॉकडाउन हो गया और ऐसा ही दृश्य हमको बाबा के कमरे में अंदर जाना मना हो गया था लॉकडाउन के समय। तो वो दृश्य बाबा ने एक और दिखाया और एक और चीज़ हुई, एक और के अंत समय मृत्यु के दो जन्म के दृश्य देखे, जो भाई जी ने अभी बात की ना कि जब सडनली और कुछ दिखता है, वो कोई ऐसे संकल्प से थे, संकल्प से तो बैठे ही नहीं थे, लेकिन जब कुछ दिख जाता है तो जीवन में क्रांति हो जाती है, आत्म क्रांति हो जाती है। तब से निश्चय बिल्कुल ऐसा हो गया कि सारी चीज़ें ऐसे छूट गईं धक से, जो शायद इतने कड़े संस्कार थे उस दुनिया के बहुत सारी चीज़ों के, वो आज दे आज सुबह ही ये अचानक बाबा की कुटिया में गए और ये देख अचानक याद आया कि वो चीज़ें तो है ही नहीं थी ओरिजिनल संस्कार। भाई जी ने बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में विकारों के संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन आज ये महसूस हुआ कि अनादि संस्कार भी सबकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े हैं, लेयर शायद विकारों की चढ़ी हुई थी, वो लेयर जैसे ही हट जाएगी तो वो चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो उनके साथ ओम शांति।